તારીખ 17/10/1994 આત્મઉન્નતિના પ્રશસ્ત ક્રમ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 83.
પ્રકારે એનો પ્રવેશ કર્યો અને યથાર્થ પ્રકારે આગળ વધે તો કયા પ્રકારની કાર્ય પદ્ધતિથી આગળ વધે એનો ક્રમ શું છે. આત્મા અનંત પરિભ્રમણથી છૂટે અને સાદી અનંત કાળ પર્યંત મોક્ષમાં અનંત સુખમાં નિવાસ કરે એવું મહાન કાર્ય, એ કાર્યની કોઈ પદ્ધતિ ન હોય અને એવું કોઈ મહાન કાર્ય થતું હોય એમ કેમ બને? કાર્ય પદ્ધતિ જ ન હોય ને એનું કોઈ એવું કાર્ય બની જાય ગમે તેમ, એમ કેમ બની શકે? કેવી રીતે બની શકવા યોગ્ય છે એ સંબંધે અનેક સત્પુરુષોએ ઘણો ઊંડો વિચાર કરેલો છે અને એ વસ્તુને નિશ્ચિત કરેલી છે. માત્ર વિચારથી જ નહીં, પરંતુ અનુભવથી નક્કી કરેલી છે. અનુભવથી સિદ્ધિને પામ્યા છે અને જે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એ અનુભવ સિદ્ધ સફળતા પ્રાપ્ત કરેલી છે. ગયા વખતે સ્વાધ્યાયના આ વિષય ઉપર શરૂઆત થઈ હતી, એનો સારાંશ એ છે.
ચાલે છે,
સબ ગુજરાતે દેખતે વિષય પે જો બાત ચલી થી કોઈ ભી મુમુક્ષુ આત્મકલ્યાણ કે માર્ગ મેં જો પ્રવેશ કરતા હૈ તો યથાર્થ તયા પ્રવેશ ઉસકા કૈસે હોતા હૈ યે સવાલ હૈ. યથાર્થ પ્રવેશ હોને મેં સબસે પહેલે ઉસકો ક્યા હોતા હૈ કે જો સંસાર કે દુઃખ હૈ, જન્મ મરણ કે દુઃખ સબસે વિશેષ હૈ, સબસે જ્યાદા તો જીવ કો દુઃખ હોતા હૈ, મરણ કા દુઃખ હોતા હૈ, મૃત્યુ કા દુઃખ હોતા હૈ. દૂસરે દુઃખ તો ઉસકે આગે બહુ અલ્પ માત્ર. તો ઉસકી ચિંતા હવે હુઈ હૈ કે નહીં? છોટે મોટે દુઃખ મિટાને કે તો આપણે કોઈ ચિંતા રહેતી હૈ, ઓર અનુકૂળતા કે છોટે મોટે સુખ મિલાને કે ભી ચિંતા રહેતી હૈ. तो गौ भ्रमण और जन्म मरण के दुख की चिंता है कि नहीं? ऐसी चिंता के वश हमारा प्रवेश है या वैसे ही हमारा प्रवेश है, वो बात थोड़ी हमें चेक कर लेनी चाहिए। क्यों कि कोई तो वारसागत इस धर्म में आए हैं। वारसागत मैंने क्या कि पिताजी यही धर्म में थे इसलिए हमको भी यही धर्म मिल गया, उसको कहते हैं वारसा। तो उसमें तो कोई बुद्धि लगाई नहीं या कोई चिंता थी नहीं, या हम हमारे किसी संबंध के कारण से इस माहौल में आ गए, कैसे कैसे भी आना हुआ लेकिन कोई हमारे चिंता नहीं थी, यानी हमको जो जरूरत लगी थी वो जरूरत लगे लगने पर नहीं आए थे। बिना भूख अच्छे से अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगी हो तो खाने का मन नहीं होता, मिष्ठान हो तो भी खाने का मन नहीं होता। ऐसे जिसको भोग भ्रमण की चिंता गले पड़ी हो और वो मार्ग को खोजता हो परिभ्रमण से छूटने का, ऐसी परिस्थिति में प्रवेश होता है तो यथार्थ प्रवेश होता है, वरना यथार्थ प्रवेश नहीं होता है। इसलिए सभी मुमुक्षुओं को अपने आप को देख लेना चाहिए कि हमारा प्रवेश इस तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, इस बात की यथार्थता क्यों है इसका विचार करें तो कि अगर भव भ्रमण की चिंता नहीं है तो संसारी जीव को संसार के अनेक प्रकार के संयोग वियोग की चिंता तो है ही, उस चिंता से कोई मुक्त नहीं है। तो ऐसी चिंता से मुक्त हुए बिना हम कुछ भी धार्मिक प्रवृत्ति कर लेते हैं तो हमारी वो चिंता तो मुख्य रहती है। मुख्य क्या है कि अनेक प्रकार के सांसारिक कार्य हैं उसकी हमें चिंता हमेशा हमेशा चालू रहती है। उसी चिंता से मुक्त हुए बिना हमको जो घंटा दो घंटा जितना भी समय मिलता है हम धार्मिक स्थान में जाते हैं, कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति कर देते हैं। लेकिन जिस चिंता में हम फंसे हुए हैं यहां से तो निकले ही नहीं, तो हमारा जो धार्मिक वो भी परिश्रम हुआ उसका कोई फल हमको मिलने वाला नहीं है, मिलता नहीं है। क्योंकि हमारी मुख्यता थी वो तो हमारी सांसारिक चिंताओं की मुख्यता रही और इसकी गौणता होनी चाहिए वो तो गौणता नहीं हुई। तो अपने को आत्मा को जन्म मरण से छूटने की चिंता के कारण से संसार की चिंता एक दफे छूट जाए तो हमारा प्रवेश यथार्थ रूप से होगा, वरना हमारा प्रवेश यथार्थ रूप में ये मुक्ति के मार्ग में नहीं होगा। इस विषय में कुछ प्रश्न हो, चर्चा करने योग्य बात हो तो हम कर सकते हैं, वरना ये बात बहुत प्रसिद्ध रूप से अनुभव में आएगी कि दूसरे प्रकार से हम द्वारा प्रवेश हुआ है तो हमको जो भी शास्त्र ज्ञान हुआ हो, हमने जो भी क्रियाकांड किया हो, हमने जो भी पूजा भक्ति किया हो, तीन प्रकार के मार्ग प्रसिद्ध हैं, ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग। उसका फल कुछ दिखने में नहीं आएगा, इसलिए इसका प्रवेश का जो प्रथम क्रम है ये इस प्रकार का है।
तो सांसारिक फर्ज न निभाए ये कहना है, सांसारिक फर्ज न निभाई जाए ये भी कहना है।
सांसारिक फर्ज वो हमारी एक कल्पना है, कल्पना से निश्चित की हुई बात है, वास्तव में हमारा स्वयं का ही राग है। क्या है? हमारा स्वयं का यह राग है, फिर हम इसको अच्छा सुंदर नाम दे देते हैं कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा धर्म है। वास्तव में तो हमारा राग है और कुछ नहीं है। देख लेना, अपने आप को कंट्रोल करके देख लेना कि वास्तव में ये फर्ज है या हमारा राग है, क्या है, फिर हम उसको अच्छा नाम दे दें। सुशोभित नाम है वो।
फर्ज रहेगा तो हम देंगे नहीं, फर्ज समझ के करेंगे तो हम देंगे नहीं, और राग रहेगा तो हम देंगे संसार।
फर्ज मैंने क्या, जैसे कोई नौकर है, तनख्वाह लेता है, उसके सामने वो अपनी ड्यूटी देता है, मैनेजर है तो मैनेजिंग करने की ड्यूटी देता है, उसके सामने हर महीने पर वो पगार लेता है, तनख्वाह लेता है। ऐसे जिस परिवार में उनसे हम खाने पीने का और हमारी अनुकूलता का लाभ लेते हैं, उस परिवार के प्रति कुछ न कुछ हमारी ड्यूटी अटेंड कर दें तो कोई जनबाई आपत्ति नहीं है, उसे कोई बड़ी तकलीफ उसमें नहीं आने वाली है। लेकिन अपनापन करके हम डूब जाते हैं, हमारा राग रस से अपनापन करके हम डूब जाते हैं, ममत्व करके हम डूब जाते हैं, तो हम पूरे पूरे फंस जाते हैं और इसका फल जन्म मरण है। जैसे ये शरीर है, ये टैक्सी है जिसमें हम सफर करते हैं, इधर उधर जाते हैं ना, इसमें हमारी आत्मा उसको लेकर के जाती है, तो उसको किराया दे दो, दो टाइम खाने का किराया उसको दे दो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें खाने में भी अच्छे से अच्छा खाना, ये सब बात गड़बड़ वाली बहुत है। कोई टैक्सी वाला नई नोट दो या पुरानी नोट दो झगड़ा नहीं करता है, लेकिन हमको तो पुरानी नोट चलती नहीं है, नई नोट चाहिए, नया नया खाना चाहिए, नई नई आइटम चाहिए। बस ऐसे फर्क समझ लो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये शरीर मेरा है, रुष्ट पुष्ट रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सर्व प्रकार से उनको अच्छी तरह पालन पोषण करना चाहिए, ये सब गड़बड़ी है। तो देह की वांछा से देह मिलेगा, नया देह क्यों मिलता है कि देह की वांछा है, देह को अच्छी तरह रखना चाहते हैं, वो तो नहीं रहेगा, दूसरा मिलेगा। लेकिन देह से मुक्त होकर के विदेह जैसा नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती, जिसका जहाँ परिणाम जाता है ऐसा उसको सहयोग मिलता है। एक जीव गेहूं का जीव होता है, एक मूंग में पैदा होता है, एक चना में पैदा होता है, धान में जीव होते हैं कि नहीं होते, अपने मग में मटकू पीए थे, गौ में दनडू थे, चोखा में ईयर था, चावल में ईयर होती है, क्यों वो जीव यहाँ की माँ क्यों उत्पन्न हुआ? तो उस आइटम उनको बहुत प्रिय थे क्या? हमको तो मूंग के आइटम बहुत प्रिय है, किसी को चना की बहुत प्रिय है, किसी को चावल की बहुत प्रिय है। ठीक भाई साहब, तुम वहां जाओ, कुदरत उसको वहां भेज देती है, जैसी मति वैसी गति। कोई मुफ्त में वहां नहीं गया, बहुत रस लिया ऐसी आइटम में, बहुत रस लिया तो वहां भेज दिया कुदरत ने। आयु में ऐसा पड़ जाता है, क्या करें, उसमें किसी की चलती नहीं थी। इसलिए देख के विचार करना है, ये सब सम्यक ज्ञान का निमित्त है। संसार का सभी संसार पूरा जगत तो सम्यक ज्ञान का निमित्त है, सच्चा ज्ञान करने के निमित्त है। हमारे पास दृष्टि पहुंचाई है इस तरह से, हम संसार की चिंता से यथार्थ रूप से मुक्त हो, आत्मा की चिंता करने के कारण से हमारे आत्मा को दुख को छुड़ाने के कारण से हम संसार के कार्यों की चिंता से मुक्त हो, तो हमारा आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवेश यथार्थ होगा। वरना आत्मकल्याण के मार्ग में जो प्रवेश हुआ है उसमें गड़बड़ चलेगी, रास्ता हाथ में नहीं आएगा। कुछ भी करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, क्रियाकांड करेंगे, भक्ति पूजा करेंगे, मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। करो तो यथार्थतया करो, जब कोई पैसा खर्च करना ही है तो माल मिले, इस तरह से पैसा दो। पैसा तो हम देंगे और माल नहीं मिलता है तो ये तो पैसा देने का क्या फिर कारण रहा? दूसरा तो ये कहेंगे कि आप तो मूर्ख हो, ऐसे पैसा दे देते हो, आपको कुछ मिलता तो है नहीं, फिर क्यों पैसा देते हो? ऐसे हम पूजा भक्ति में, क्रियाकांड में, शास्त्र ज्ञान में हमारा समय का शक्ति का खर्च करते हैं, माल कितना मिला, खर्चा किया, इसके सामने कोई माल मिला कि नहीं मिला? ये बात तो हम बनिया है, हम लोग चेक कर लेना चाहिए। ये तो हम क्यों करते हैं? सवाल तो ये है कि हम इस धर्म करते हैं, उस सब करते करते क्या धर्म करते, क्यों करते हैं, ये हमारा सवाल है। हमारा धर्म करने के पीछे हमारा कौन सा अभिप्राय है, हमको क्या चाहिए कि बस ये रूढ़िगत कर लेते हैं हम? ये धर्म कोई रूढ़ि रिवाज का विषय नहीं है। चलो हमारे में तो वो रिवाज है, दूसरा रिवाज हमारे में, दूसरे लोगों को दूसरा रिवाज है, हमारे में यो वो रिवाज है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि उसको तो परंपरा से कार्य धर्म कार्य करने वाले को तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, उसको तो संप्रदाय बुद्धि या कुल परंपरा की बुद्धि है, धर्म बुद्धि नहीं है। धर्म बुद्धि वाले तो बराबर परीक्षा करते हैं कि हमको धर्म प्राप्त होता है या नहीं होता है, हम करते हैं ऐसा, वो बराबर देखता है। तो जिसको धर्म करना है उसको मुक्त होने के लिए धर्म करना है, या तो दूसरा कारण से करना है, दूसरे दूसरे भी संसारिक कारण से लोग धर्म करते हैं कि हमारी बीमारी मिट जाए तो ठीक है, हमारा परिवार बढ़ जाए तो ठीक है, पुत्र आदि नहीं होता हो, या हमारी निर्धनता चली जाए तो ठीक है, या हमारे अनेक प्रकार की समस्या प्रतिकूलताएं खड़ी हो निकल जाए मिट जाए और अनुकूलता हो जाए तो धर्म करे तो फायदा हो जाएगा। तो ये तो संसारार्थ धर्म करने की बात है, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए धर्म करने की बात नहीं है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये कोई धर्म करने की सही पद्धति नहीं है। तो सबसे पहले जिसको मुक्त होने का निर्धार होता है उनकी भूमिका क्या होती है, इस पर चर्चा अपनी चल रही है। तो उसको संसार से छुटने का अपने अंतःकरण में प्रामाणिक अभिप्राय होना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से हमको संसार से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, और परिपूर्ण शुद्धि हमें चाहिए, परिपूर्ण सुख चाहिए, क्योंकि आत्मशुद्धि और सुख अविनाभावी है, साथ ही रहता है, और संसार के दूषित परिणाम और दुख एक साथ रहता है। ये सिद्धांत है, दुख का सिद्धांत दूषित परिणाम है, सुख प्राप्त होने का सिद्धांत में निर्दोषता उसका कारण रूप परिणाम है। तो हमें वास्तव में मुक्त होना ही है क्या, ये हमारा अंतःकरण की शुद्धि की चिंता से होती मालूम पड़ती है। अगर ऐसी चिंता नहीं होती है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। यानी मुक्त होने के लिए हमारी जो विचारणा होनी चाहिए, जिसको ज्ञानी सुविचारणा कहते हैं, तो सुविचारणा में जीव नहीं आता है तो उसको मुक्त होने का सही निश्चय नहीं होता है, या उसकी दृढ़ मोक्ष इच्छा नहीं होती है। जिसको मुक्त होने की इच्छा नहीं तो उसको मुक्त होने का कोई कारण भी नहीं बनेगा, वो तो बंध के परिणाम में लगा हुआ रहेगा। वो एक पहला जो स्टेज है वो अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसमें मुक्त होने की चिंता होती है, वास्तविक चिंता होती है, और उसकी वेदना रहती है कि अरे मेरा जन्म मरण तो कैसे मिट सकता है, किस प्रकार से मिट सकता है। उसकी वेदना पूर्वक जो चिंता होती है वो अंतःकरण की शुद्धि को उत्पन्न करती है, और सांसारिक जो भी प्रवृत्ति है उसमें गौणता ला देती है, उसकी मुख्यता को छोड़ा देती है। ये सबसे पहला आत्म उन्नति होने वाले जीव के परिणाम का स्वरूप है, सबसे पहला कर्म यहां से चालू होता है। ऐसे हुए बिना कुछ भी करे वो क्रम भंग प्रवृत्ति है, यानी क्रम विपर्यास रूप प्रवृत्ति है, और ऐसे विपरीत पद्धति से कोई कार्य करना चाहे तो उसमें सफलता मिल नहीं सकती। जैसे हलवा बनाते हैं शिरो शिरो बना रहे, तो दूसरे प्रकार से बनाने को जाएगा तो सब बिगड़ेगा, तो पद्धति से काम करना पड़ता है। हर कार्य में इसकी पद्धति तो है ही, तो यहाँ पद्धति का जो क्रम है उसमें सबसे पहली यह बात है। दूसरी पर पेज पर जो हमारा विषय है तो आगे लेते हैं।
पैराग्राफ से।
दूसरा पत्र 128 में अनंत काल का परिभ्रमण जिस जिस कारण से जीव को परिभ्रमण हुआ है वह कारणों का स्मरण दिया है। 128 नंबर का जो पत्र है उसमें ये बात लिया है कि हमारा जीव ने क्यों प्रमुख परिभ्रमण किया। तो भूतकाल में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने तीव्र राग, तीव्र द्वेष, तीव्र माया आदि कषाई या और उसके कारण से अकथ्य दुख भोगना पड़ा। तो हमारा परिभ्रमण का कारण क्या है कि हमारा मलिन परिणाम थे वही हमारा परिभ्रमण का कारण है। उसके स्मरण होने से जीव को संसार के प्रति अत्यंत वैराग्य आता है। जिस संसार के प्रति जीव का मोह है ये वैराग्य से विरुद्ध परिणाम है। तो उस संसार के प्रति वैराग्य आना जरूरी है और वो वैराग्य किस कारण से आवे कि हमने जो जो परिणाम किए उस परिणाम के फल में हमने परिभ्रमण किया है, जन्म मरण किया है। तो जन्म मरण के कारण रूप परिणाम जो संसार के हैं उसके प्रति निरस्ता आए बिना निरस्ता को ही यहाँ वैराग्य कहते हैं। हमारा जो मोक्ष के लिए निर्धार होना चाहिए वो निर्धार नहीं हो पाता। मोक्ष है ये मोक्ष जीव का ध्येय होता है, साध्य अवस्था है। साध्य अवस्था को ध्येय कहते हैं और ऐसा ध्येय हुए हो नहीं होता है जहां तक वहां तक इस जीव का संसार का ध्येय तो अनादिश है ही। माने जीव को दो ही ध्येय हैं, एक संसार और एक मोक्ष, दोनों आपस में प्रतिपक्ष में हैं। तो एक ध्येय में तो जीव खड़ा है, उस ध्येय को बदलने के लिए हमारे पास कौन सी विचारधारा होनी चाहिए। तो उस संसार में हम जो दुख भोगते हैं वो दुख किस किस कारण से उस दुख भोगे उसकी विचारधारा जो है इसका चित्रण 128 नंबर के पत्र में कृपालु देव ने किया। ऐसा वैराग्य जीव को संसार परिभ्रमण से छूटकर सादे अनंत अव्याबाध समाधि सुख की दशा के लिए अत्यंत दृढ़ इच्छा पूर्वक यह दशा का लक्ष्य होवे उसके प्रति प्रेरणा देता है। तो वो भी हमको चेक करना है, अब इसी बात को भी चेक करना है। क्यों? तो जो भी धार्मिक क्षेत्र में आकर जो भी प्रवृत्ति करता है उसको पूछो क्यों, तो हमको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, मोक्ष के लिए, क्रियाकांड क्यों करते हैं, मोक्ष के लिए, पूजा भक्ति क्यों करते हैं, तो मोक्ष के लिए। तो इसको पूछते हैं कि संसार और संसार के दुख के प्रति वैराग्य आया है या नहीं आया है, कि वैसे ही मोक्ष चाहिए। संसार के प्रति हमारा मोह उतना का उतना रहे और हम धार्मिक क्षेत्र के कोई हमारी मनमानी प्रवृत्ति कर ले तो इससे कोई प्रवृत्ति की सफलता नहीं मिलती है। ये बात चेक करने की है कि हम धार्मिक प्रवृत्ति तो करते ही हैं, हमारे जो भी संप्रदाय हो, जो भी हमारा सत्संग का माहौल हो, कुछ भी हो, कुछ समाज के साथ हम धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। तो हमारा संसार प्रति का मोह कायम रख करके करते हैं या उसमें विरक्तता आई है और करते हैं, ये चेक करने का विषय है। हमारा मोह वैसा का वैसा बना रहता है और हमको हमको धार्मिक प्रवृत्ति सुहाती अच्छी लगती है, इसलिए हम करते हैं, इसमें सफलता मिलने वाली। 128 नंबर का पत्र है, तो बिल्कुल मोक्ष का ध्येय का निश्चय करने वाले, निर्धार करने वाले का परिणाम कैसा है? और असारता नहीं लगती, जबकि जब लग संसार की अशरणता, कौन शरण है संसार में, जिस संयोग की औच से, आधार से, रूप से हम हमारे जीवन को जीते हैं, कोई सब जो भी हमारी संपत्ति आदि जो भी प्रकार है हमारे परिवार आदि, तो हमको शरण रूप होने वाले नहीं, हमको ये मृत्यु से, जन्म मरण से छुड़ाने वाली कोई चीज नहीं है। अशरणता से हमको मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है, कोई शरण है क्या? कोई नहीं बचा सकता, कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। वो बात हमको मृत्यु आने के पहले उसकी अशरणता हमको भाषित होती है, या हमने जितना भी परिश्रम किया सब व्यर्थ गया, अनंत काल का परिश्रम व्यर्थ गया कि नहीं, इस भोग का भी व्यर्थ जाने वाला है, इसलिए वो असार है, ऐसा मालूम पड़ता है क्या? कि निरस्ता आने का कारण तो चाहिए ना, तो कारण वास्तविक ठोस कारण होना चाहिए, कल्पनायुक्त नहीं, काल्पनिक कारण से, कल्पना विहार करने से हमारा कार्य होने वाला नहीं है, वास्तविक रूप से लगना चाहिए कि हमको कोई शरण होने वाला नहीं है। ये एक रोग की पीड़ा होती है, दुख होता है, पीड़ा वेदना होती है, कौन छुड़ा सकते हैं? हमारे प्रिय से प्रियजन है, वो हमारे दुख को बांट सकता है क्या? चलो आपको बहुत दर्द होता है, आधा हम ले लेते हैं, आधा आप भोगो, आधा हम भोगेंगे, हो सकता है? ऐसे तो पति पत्नी को लाइफ पार्टनर कहते हैं, लेकिन दुख में कोई पार्टनरशिप कर सकता है क्या? हाँ, कोई बिच्छु जीव जानवर करड़ता है, रक्त काटता है, वेदना होती है, कोई ले सकता है क्या? या अग्नि से जलना हुआ तो जलन से कोई थोड़ी जलन के वेदना ले सकता है क्या? रोग की कोई पीड़ा को बांट सकता है क्या? इसमें का कुछ होता नहीं है, अशरण है जी, दुख भोगने के लिए अशरण है। हमारे पास पैसा बहुत है, अलंकार, सोना, हीरा बहुत है, भाई का हाथ कट गया था तो हम उस वक्त कहते थे हॉस्पिटल कि इनके जो पैसे हैं 5-10 लाख के नोटों के बंडल इधर लगा दे, हैं? ये जो हाथ कटा है उसकी वेदना को कम कर सकता है क्या? डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, बातों होगी तो आयुष्य इसलिए बचा है, बाकी ऐसा मेजोर इंजरी होता है तो कोई बचता नहीं है, हजार में से एक भी नहीं बचता है तो बोलते थे। और शुरू के 5 घंटे में वही स्थिति थी, एक्सीडेंट हुआ, बचने का हमको आसान नहीं है। आपको कुछ उपाय करना हो तो करो, सुनाओ, बोलो, जो कुछ करना हो कर सकते हो, उनको नहीं लगता है कि बचेगा। तो न दवाई और डॉक्टर बचा सकता है, न उस पीड़ा में से वहां कोई अलंकार लगा दे, हीरा मोती माणिक सोना नोटों के बंडल कुछ भी लगा दो, असरण है सब, ये पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ऐसा कोई हमने अपराध किया है तो इसका फल भोगना ही पड़ता है, असरण है। ऐसी असरणता मालूम पड़े तो निरस्ता आवे, पर ऐसा होने पर भी संसार के प्रति निरस्ता नहीं आवे तो फिर क्या क्या कहना हा? फिर भी संसार के कार्यों में हमें उत्साह, उमंग उत्साह रहता है, रस आता है, तो फिर छूटने की आशा मत करना, उसको छूटने की आशा करने के लिए नहीं। तो जहां तक संसार की असरणता और असारता नहीं लगती वहां तक पूर्ण शुद्धि का, मोक्ष का लक्ष्य निश्चित नहीं होता, वहां तक हमको किसी भी कीमत से इस संसार से छूटना है, वो ऐसा निर्धार नहीं होता। वहां एक बहुत अच्छी बात दिया है कि जिसको छूटने का सही निर्धार होता है, निश्चय होता है, उसको किस प्रकार से होता है कि चाहे सो हो जाए, चाहे जितना उत्सर्ग परिश्रम दुखा पड़ो, आदि व्याधि उपाधि हो जा, अरे आयुष भी छूटने की तैयारी हो जा, उनको हमारा आत्मकल्याण करना है, हमारा मोक्ष उनको चाहिए, चाहिए हो चाहिए ही, एट एनी कॉस्ट हमको मुक्ति चाहिए। ऐसा निर्धार हुए बिना मुमुक्षुता का प्रवास कभी प्रारंभ नहीं होता, ये सिद्धांत है कि इसके सिवा मुमुक्षुता का प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो बहुत दूर है अभी, लेकिन मुमुक्षुता का प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष की इच्छा जिसको है उसको मुमुक्षुता कहते हैं, सच्ची इच्छा ऊपर ऊपर के नहीं। तो हमें चाहिए तो मोक्ष, मामूली वस्तु नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, और उसके लिए हम क्या कीमत चुकाने, कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्या हमारी तैयारी ऐसी है कि किसी भी कीमत पे हमें मोक्ष चाहिए। संसार में भी 1 तोला सोना चाहिए तो इसके लिए इसका जो 5,000, 6,000, 7,000 रुपया लगता है उसका पैसा देना पड़ेगा, 1 तोला सोना के लिए उसका पैसा देना पड़ता है, उसमें कम पैसे में आता है क्या, नहीं आता है। तो मोक्ष जैसी चीज चाहिए इसके लिए हम कौन सी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ये सवाल है कि क्या हमारी तैयारी है कि किसी भी कीमत पे हमें मोक्ष चाहिए। जैसे 100 रुपया की चीज आपको 50 में चाहिए या 100 का 100 देना है, या आपकी तैयारी के 125 लगे तो 125, लेकिन वो चीज हमको चाहिए। तैयारी कैसी है हमारी, तो यहां तो ज्ञानी कहते हैं कि जिसको मोक्ष होता है उसको संसार नहीं रहता, मुक्त आत्माओं को संसार नहीं रहता। क्या तुम तुम्हारे संसार को देने के लिए तैयार हो? मोक्ष चाहिए तो संसार को खत्म करना पड़ता है। अब पूछ लो हमारे आत्मा को कि हमारा जो संसार वर्तमान प्रवर्तमान संसार है, इसका भोग देने के लिए हम तैयार है? आज ये सवाल है। तो हमको तो संसार भी प्रिय है और मोक्ष भी प्रिय है। दो बात तो कभी बनने वाली है ही नहीं, प्रतिपक्ष है। हमारी तैयारी कितनी है? माल तो चाहिए हमें लाखों का, पर पैसा हमें उतना देना नहीं, वो तो बात प्रमाणिकता नहीं। हमारी प्रमाणिकता वो चाहिए जितना माल हो उतनी पूरी कीमत हम दे दें। उतनी प्रमाणिकता होनी चाहिए कि हमारा संबंधी से हम माल लेते हैं, पहचान वाले से। अगर वो कहेगा कि हम तुम्हारा कम पैसा लेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, तुम पूरा दो। इसी का नाम प्रमाणिकता है। लोग जान पहचान वाले के वहां खरीदी करते ना, तो पैसा देने में कहते कि आप कितना कम लेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। कहना तो ऐसा चाहिए कि हमको चीज अच्छी चाहिए, क्योंकि हमको पैसा पूरा देना है, अधूरा नहीं देना है। तो बोलोगे नहीं, आपके साथ संबंध है ना, इसलिए आपका कम लेंगे, तो हमको कहना चाहिए कि नहीं, हमारा आपका संबंध पैसा कम देने के लिए नहीं है। हमारी वो प्रमाणिकता है कि आपको पूरा पैसा लेना है तो हम आपसे माल लेंगे, अगर आप पूरा पैसा नहीं लेंगे तो हम आपको माल नहीं लेंगे। ये हमारी प्रमाणिकता का सवाल है। वो कुछ भी कहे कि हम कम लेंगे, लेकिन नहीं, हम तो कम देने वाले नहीं है, हम तो पूरा देने वाले हैं। ऐसी प्रमाणिकता संसार में सज्जनता होनी चाहिए, तो ये तो हमारा मोक्ष हमें चाहिए, इसके लिए हमको पूरी कीमत चुकाने का हमारा अभिप्राय है या नहीं है, उसको हमें चेक करना है। जो अगर हमारा अभिप्राय साफ है, हमारा अंतकरण शुद्ध है कि नहीं, जितना माल है, मोक्ष तो एक ऐसी चीज है कि हम हमारा पूरा संसार दे दें तो भी इसके आगे कुछ नहीं है। क्या हम पूरा नहीं देते हैं फिर भी? ये तो कुछ नहीं है, तो हमको कुछ भी नहीं देना है और मोक्ष चाहिए, क्या बात है? कैसे मिलेगा? मोक्ष के आगे संसार की वैल्यू कितनी है ये बताओ। तो कुछ नहीं है। जो मोक्ष का अनंत सुख है, सादी अनंत अनंत समाधि सुख, उसके आगे संसार के किस पदार्थ की कीमत है? कोई पदार्थ की तो कीमत नहीं है। फिर भी हम उसका मूल्यांकन सही रूप से नहीं कर पाते हैं और हमें चाहिए मोक्ष। मूल्यांकन भी नहीं कर पाए और हमें चाहिए मोक्ष, ये बात कहां तक ठीक है? मूल्यांकन तो ऐसा होना चाहिए कि संसार के किसी भी पदार्थ की कीमत ही नहीं है इसके पास। एक मृत्यु से बचाने वाली दवाई के लिए हम पूरी संपत्ति दें के नहीं लें, देने के नहीं देने के। अगर मृत्यु से बच सकते हैं, अगर अमर हो जाते तो ठीक है, मांग लो कुछ भी मांग लो। वहां वास्तविकता समझ में आती है कि अनंत जन्म मरण से छूटने की दवाई है। एक टेबलेट समीर दर्शन की खा लो, अजर अमर पद मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ देना नहीं है, मुफ्त में मिलती है।
सिर्फ आपको आपका अभिप्राय बदलना है, आपका मूल्यांकन बदलना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, बात खत्म। मूल्यांकन बदलने से उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, निर्णय देने का कोई सवाल ही नहीं, आपके परिणाम पलट जाते हैं बस, बाहर में कुछ पलटा नहीं होंगे कोई मतलब नहीं, परिणाम पलट जाते हैं और परिणाम संसार के प्रति निरस होकर के मोक्ष के प्रति के परिणाम जो है वो रस वाले हो जाते हैं। इसलिए पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य होता है तब से ही मुमुक्ष जीवन का मुमुक्षुता रूप से यथार्थ प्रारंभ होता है। पूर्णता के लक्ष्य वाला मुमुक्ष जीव की दृढ़ता होने से पहले उसकी भाव भूमिका कैसी होती है, उसका तादृश्य चिता इस पत्र के प्रारंभ के चार पैराग्राफ के द्वारा प्रदर्शित हुआ है। 128 नंबर किस किस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ परिभ्रमण के प्रति, तो चार पैराग्राफ में दिया है, वहां से पढ़ लेना चाहिए। और मुमुक्षु जीव को अवश्य वारंवार उसका गहरा अवगाहन मैंने अध्ययन करने योग्य है। पूर्णता के लक्ष्य होने के लिए वैराग्य की भूमिका में आने के बाद लक्ष्य बंधिताएं उसके पहले संसार से छूटने के लिए बहुत गहरा मंथन चलता है, उसके बाद ही लक्ष्य की दृढ़ता उत्पन्न होती है। बहुत गहरा मंथन चलता है छूटने के लिए, उतना गहरा मंथन चले कि यहां से छूटना मुश्किल हो जाए, मंथन में से निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतना महान कार्य है संसार से छूटना, ये बहुत बड़ा महान कार्य है। संसार की एक उपाधि आती है बड़ी कोई, तो दूसरे सब विचार छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं, ये तो बहुत बड़ा महान कार्य है। उसको दर्शाने के लिए कृपालु देव के वचन मुमुक्षु जीव के मर्म स्थल को स्पर्श हो जाए, छोड़ जाए, ऐसे वचन उन्होंने लिखे हैं। उस वचन का उद्धरण यहाँ क्या है कि चाहे जैसा हो, चाहे जितना दुख भोगना पड़े, चाहे जितना परिश्रम सहन करना पड़े, चाहे जितना उत्सर्ग सहन करना पड़े, चाहे जितनी व्याधि सहन करनी पड़े, उपाधि आ पड़े और आदि आ पड़े, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और दूर निमित हो, मैंने अनुकूल संयोग न हो, फिर भी परिभ्रमण न हो ऐसा करना ही है। मुझे मेरा परिभ्रमण न हो ऐसा करना ही है, एटनी कॉस्ट, एक उतने शब्द में कोई भी किसी भी कीमत का मुझे करना है, निर्धार होना चाहिए, कीमत कोई नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन निर्धार ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे मुझे मेरा आत्म कल्याण कर लेना है और कर ही लेना है। ऐसा हुए बिना, तो ऐसा अभिप्राय हुए बिना हे जीव तेरा छुटका नहीं है, ऐसा लगना चाहिए अंदर। इस प्रकार से किसी भी कीमत पे निर्धारित लक्ष्य को पहुंचने के लिए कोई अपूर्व संवेग जब मुमुक्षु जीव के परिणाम में उत्पन्न होता है, तब वह मुमुक्षु यथार्थ प्रकार से ज्ञानी के मार्ग के आगे के क्रम में प्रवेश करता है और किसी भी पर्याय में उसको संतोष नहीं होता। ये चौथा क्रम दिया है, स्टेज नंबर 4। पहले स्टेज में सुविचारणा है और परिभ्रमण की चिंता है, दूसरे स्टेज में पूर्णता के लक्ष्य पहले का वैराग्य है और किसी भी कीमत पे हमें ये प्राप्त करना ही है ऐसा एक निर्धार होता है, तो इतनी तैयारी अभिप्राय की आती है तो दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज में पूर्णता का लक्ष्य होता है कि हमें यहाँ पहुँचना ही है, हमारी परिस्थिति बहुत कमजोर है और हमें पूर्ण शुद्धि चाहिए, अब हम पूर्ण अशुद्धि में पड़े हैं, जल्दी से जल्दी हमारा कार्य हमें कर लेना चाहिए। जब ये पूर्णता का लक्ष्य बंधता है तो एक बलवान परिणाम उत्पन्न होता है, उसको संवेग कहते हैं। आत्म कल्याण के लिए यथार्थ वेग में आ जाना, स्पीड में आ जाना, उसी को कहते हैं संवेग। उसको ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं जानता हूं लेकिन मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है, वो बात उसको नहीं होती, उसको संवेग चालू हो जाएगा, वेग पुरुषार्थ का वेग चालू हो जाएगा। ये लक्ष्य बंधा है, इसके पीछे का स्टेज वही है और इससे निश्चित होता है कि लक्ष्य बंधा है कि नहीं बंधा है। वरना मोक्ष जी ऐसा कहेगा कि हमको तो मोक्ष चाहिए लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता, वो बात पूर्णता का लक्ष्य वाले को नहीं होती। उसका बहुत अच्छा वेग चलता है, अपने आत्मकार्य के लिए बहुत अच्छा वेग चलता है। क्यों चलता है? कि उसको प्रतिबंध का कोई कारण नहीं, न उसको समाज प्रतिबंध है, न कुटुंब प्रतिबंध है, न देह के अनुकूलता प्रतिबंधता का प्रतिबंध है। चार प्रतिबंध में से तीन प्रतिबंध चला गया उसको दो राय बिना रहता है, तो तीव्र पुरुषार्थ से संवेग से अपने आत्मकार्य में लगता है और अच्छी योग्यता को प्राप्त करता है तो भी उस योग्यता का संतोष उसको नहीं होगा। क्यों? तो उसको पूर्णता चाहिए, तो पूर्णता में संतोष हो करेगा उस विषय में थोड़ा विशेष विस्तार बात चली है 4 नंबर के पर।